اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں مرتبوں اور فضیلتوں کی بات کر کے فرمایا، ان سے کہو، پکار کے دیکھو اپنے ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں. ہائی لائٹ کر لیں کہ جو لوگ خود بےچارے انگیز رہے، تم ان سے انگیز ہو کر کرو گے بھی کیا؟ تو جو اللہ تک وہ پہنچ سکتے ہیں تم بھی پہنچ جاؤ. جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. یہ ہے اصل بزرگ. ولی بنانا ہے کسی کو، کسی کو پیر بنانا ہے، کسی کو استاد بنانا ہے، تو یہ کرائیٹیرین ہے کہ وہ خود اللہ سے کتنا ڈرتا ہے اور وہ خود اللہ کی رحمتوں کی کتنی امید رکھتا ہے. حقیقت یہ کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا. مکہ والے مطالبے کرتے تھے کہ مطالبہ مطالبہ، معجزے دکھاؤ. اللہ کہتے ہیں ہم دکھا سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں دکھاتے؟ کیونکہ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے. یعنی اللہ کا اصول کیا ہے؟ جب کوئی قوم نشانی مانگے اور پھر عمل نہ کرے، اس کے اوپر ہدایت پہ نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو تباہ و برباد کرتا ہے. تو اللہ کے نبی کے جو اپوننٹ تھے یا آپ کے مخاطبین تھے، اللہ نے ان سے یہی معاملہ کیا کہ مکہ والوں مت مطالبے کرو ورنہ سارا مکہ جو ہے وہ تباہ ہوگا. جیسے کہ واتعین سمود الناقہ، چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دے دی، اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ غیر معمولی نشانیاں پا کر غیر معمولی نیکیاں نہیں کی، ذمہ داریاں نہیں نبھائیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح ان نعمتوں کو بندے کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے جن کو مانگ کر بندہ پھر ان کا حق ادا نہ کرے. یہی قوم سمود کے ساتھ ہوا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر ڈرے. یاد کرو اے نبی، ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ابھی ہم نے تم کو دکھایا ہے، یہ بھی واقعہ معراج کے موقع پہ ایک دیکھا ہوا واقعہ یا خواب میں دکھایا گیا تھا، اس پہ کچھ لوگوں نے طنز کیا تھا، اسی کی بات ہے. فرمایا، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تم کو دکھایا، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا، اور ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جاتے ہیں، مگر ان کی سرکشی میں ہر تنبیہ سے تو اضافہ ہی ہوتا گیا. اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا، دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اس کو مجھ پر فضیلت دی؟ ہائی لائٹ کر لیجئے، شیطانی رویے، تقابل، انا کا شکار، خود کو بڑا کہنے والا، ریزننگ پیش کرنے والا، لاجکس دینے والا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا، اس کا حسد دیکھیے، دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی. یعنی اللہ کے حکم پہ تنقید بھی کر رہا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے اتنے مشکل حکم دیے ہیں، خود کرنے پڑتے نا اس بلا تو پتا چلتا. اللہ اکبر، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بےخونی کر ڈالوں. یہ بھی نوٹ کر لیں، گناہوں کی مہلت مانگنا. ابھی تو اتنے تھوڑے گناہ کیے، ذرا زیادہ کروں گی تو مزہ آئے گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اور یہ بات سچ تھی شیطان کی، اس کو پتا تھا کہ بہت سارے میری باتوں میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، شان بے نیازی سے کہا جا، جو مانگے تجھے ملے گا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، جا بول کے دعوت دے، دعویٰ دے ان کے لیے کچھ، تو ایسی مشنریز قائم کر تو اپنی طرف لوگوں کو بلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا. یعنی لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم قسم کی پلاننگ کر لے، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، یعنی ان کی اولادیں لے لے، بزی کر دے، ماں باپ کا نافرمان کر دے. اور وقت میں سے مال میں سے کیسے لے لے، ان کا سارا مال تیرے ہی راستوں میں لگے، سب لے لے، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھنسا. یو لیو اونلی ونس، شیطان کے وعدے اسی قسم کے دکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو چیلنج کیا اور ساتھ ہی ہمیں بتا دیا، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. ان آیت میں دیکھیے پھر شیطان کی باتیں، آپ بہت ہی کلوز سرکٹ میں یہاں شیطان کی میتھڈولوجی سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلے انسان کو کفر کا حکم دیتا ہے، انسان اس میں نہ پھنسے. سیکنڈ سٹیپ پہ شرک، شرک کرو، اور یہ شرک تو روپ بدلتا ہے. کل کا شرک قبر پرستی کا اور بت پرستی اور ستارہ پرستی کا، آج کا شرک سائنس اور مادہ پرستی کا اور دنیا کی محبتوں کا شرک ہے. پرانی شراب کو نئی بوتلوں میں ڈال کر بیچیں تو وہ شراب ہی رہتی ہے، आज शिर्क रंग बदल चुका, लोगों को दुनिया में इस तरह उलझा दिया जैसे कल के लोग बुतों में उलझे हुए थे। खैर, शिर्क से बचा है कोई इंसान तो उसको बिदत में डाल देता है, कोई बिदत भी ना इसके कहने पे करे तो नेक्स्ट स्टेप पे फिर कबीरा गुनाहों को छोटा करके दिखाता है। इट्स ओके, आज के दौर में ये छोटा हो गया गुनाह, कोई बात नहीं क्योंकि बहुत सारे कर रहे हैं। कोई इंसान उससे भी रुक जाता है अल्लाह के हुक्म से, और ये मुसलसल जंग है, यही जिहाद बिन नफ्स है। शैतान से आप बचते हैं, उस बिला पढ़ते रहते हैं, आप कबीरा से बच गए, फिर उसके अगले स्टेप पे नेक लोगों की गलतियां लोगों को दिखाता है, हाईलाइट करके मैग्नीफाइंग ग्लास में। देखो दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे थे, लिहाजा दाढ़ी नहीं रखो। ये नहीं कहा कि दाढ़ी रख के झूठ नहीं बोलो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखो हिजाब कर रही थी ना, एक बाल उनका दिख रहा था, तौबा तौबा, अल्लाह इनको माफ करे। तो आप किधर गई? वो जल्दी में कमीज पहन नहीं, भूल गई, बड़ी मासूम है, बड़ी स्माल है। यानी गुनाहगारों को मोहलतें दिलाएंगे, ओ देर सो स्वीट, और इनके दिल चुके साफ है, इनको परवाह ही नहीं क्या पहन के बाहर निकले, ये अंदर से बड़े नेक हैं, या अंडर गारमेंट्स में आ जाएंगे तो खैर है। ये नेक देखो देखो हिजाब पहनते हैं, और साथ देखो इनके क्या हालात हैं, देखो क्या करते होते हैं, इस तरह बातें चुनवाता है। नेक लोगों, अच्छे काम करने लोग की गलतियां दिखाता है। जब इस तरह के कामों से भी कोई जब इसकी रास्तों में नहीं आता ना, तो फिर उसके बाद उसको सगीरा में डाल देता है, चलो ना छोटा ही गुना है बार बार, और इतना छोटा कराता है कि उसके बाद फिर इंसान उन सारी चीजों से पीछे आने लगता है और परेशान होने वाला हो जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये शैतान की बातें हैं। फिर इसमें आप देखिए शैतान की आवाज का जिक्र है, कौन सी आवाज है? हर आवाज जो बुराई की तरफ बुलाए, हर आवाज जो अल्लाह से दूर करे, जाहिलियत को भड़काए, फिर कावारियत को आम करे, कौमियत का नारा लगवाने वाली। और इसी में फिर गाने और मजामीर भी आते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। गाना दिल में निफाक पैदा करता है, जिस तरह बारिश की वजह से सब्जा पैदा हो जाता है। फिर इसी तरह इन सारी चीजों में भी कामयाब नहीं होता ना, तो जायज और बेफायदा कामों में लगा देता है। ऐसे ही जायज है खाना पकाना, घर बनाना, उसी को बेमकसद करवा देता है। फिर इसी तरह इसका एक और ट्रिक क्या होता है कि बड़े अजर के काम छुड़ाकर छोटे छोटे अजर वाले काम कराता है। यानी क्या जाना है सुनना, इतनी दूर घर बैठ के तीन सवारे पढ़ लेते हैं, चलो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और इस तरह से फिर लोगों को पीछे लगाता है। देखो देखो ऐसे दीनदार, तौबा तौबा, इससे तो अच्छे हैं। कई लोगों ने आज कुरान से रुकने का उजर क्या रखा हुआ है, ये दीनदार अमल नहीं करते, ये मौलवी है ना, तुम्हें क्या पता इनके क्या करतूत है, तो भाई आपको क्या लगे। उन्होंने दर्ज में तो आके नहीं कहा कि घर वालों पर सख्ती करना या करना, वो तुम्हें दीन सिखा रहे हैं, मान जाओ। अब वो बीवी के साथ कैसे हैं, भाई से उनका क्या इश्यू है, आपको क्या लगे। क्या कभी डॉक्टर बीमार नहीं हुए होते हैं ना? तो अगर कोई दीन बताने वाला भी रूहानी तौर पर किसी गुनाह का शिकार हो जाए तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है, रूहानी इलाज करने वाले भी बीमार हो जाते हैं। तो नेक इंसान शैतान को पहचान जाता है, वो तौबा कर लेता है, बुरा इंसान शैतान का शुक्रिया अदा करता है, थैंक यू सो मच आपने हमें बताया। फिर इसी तरह एक और इसका ट्रिक क्या होता है कि फराइज से गाफिल करके मुबाह के पीछे लगा देता है। एक कॉल है किसी का कि शैतान बाज दफा 70 नेकी के काम करवाता है ताकि एक बुराई का रास्ता आसान कर दे। 70 कह लीजिए कि नेकियां कराएगा ताकि बाद में आप एक जुमला ऐसा बोल के अपनी सारी नेकियों को जाया कर दें। फिर आप देखिए कि शैतान के वादे क्या है कि गुनाहों के साथ मगफरत मिलेगी, देखना अल्लाह माफ कर देगा। गुनाहों के साथ रंगीनी का तस्वुर पैदा कराना ये शैतान का वादा है, नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह की रजा की उम्मीद दिलाना ये शैतान का वादा है, डोंट वरी अल्लाह इज सो मर्सीफुल ये शैतान का वादा है। और इस तरह से ऐसी बातें करेंगे। अब देखिए अल्लाह ने मोहलत दे दी, जा क्यामत तक मोहलत है। कुछ कहेंगे हाय अल्लाह इनको क्यों मोहलत दी जालिम को, और कुछ आप जैसे माशाल्लाह लोग हैं वो कहेंगे अल्लाह ने मुझ पे भरोसा करते हुए इसको मोहलत दी है कि जज कर ले, मुझे पता है मेरी ये बंदी गुनाह नहीं करेगी। और जब हम शैतान के वार से निकलते हैं तो हम अल्लाह ताला को खालिस करते हैं, एतमाद पैदा करें अपने अंदर इंसान। आप देखिए जितना इंसान खालिस होता है ना वैसे ही होगा। जो बच्चा खूब पढ़ के आता है ना वो पूरे एतमाद से कहता है एग्जामिनर और टीचर को, जो इम्तिहान लेना ले लो, जहां से पेपर देना दे दो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने आप को कैसे बचाना है। तो आखिरी बात है कि जब इतना जालिम है तो हम इससे बचें कैसे, शैतान से इंसान कैसे बचेगा, तकवा के जरिए। आप लिख लीजिए कि तकवा का ऑपोजिट क्या है शैतान का साथ, इखलास। जितना इखलास आएगा शैतान आपसे ऐसे भागेगा जैसे करंट से एक इंसान भागता है। मोमिन का जमीर तराजू की तरह होता है, एक पलड़ा भी इधर से उधर झुकता है ना उसको पता चल जाता है। तो तकवा इतात और इबादात का मजमुआ होता है, इनको बढ़ाते जाएं शैतान से बचते जाएंगे। हदीस में आता है कि शैतान मच्छर के डंक या हाथी की सूंड की तरह बंदे के दिल पर नजर रखा होता है, जो ही इंसान जिक्र को छोड़ता है तो हमला करता है, तो जिक्र के साथ लें। फिर इसी तरह शैतान अल्लाह के नाम से भागता है, दुआएं करने से भागता है, उल्टे हाथ से खाने पीने वाले से शैतान बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि वो हमें इन सब से बचा दे, और इस तरह से अपने आप को हम बचा कर इसके हाथों से आगे आए, ताकि अल्लाह का हक अदा करें। अगली आयतों में अब अल्लाह की तौहीद के कुछ निशानियां बहुत ही खूबसूरत तरीके से। रब्बुकुमुल्लज़ी युस्जी लकुमुल्फुल्का फिल बहरी, तुम्हारा हकीकी रब तो वो है जो समंदर में तुम्हारी कश्ती चलाता है ताकि तुम इसका फजल तलाश करो। हकीकत यह कि वो तुम्हारे हाल पर नहायत मेहरबान है। जब समंदर में तुम पर मुसीबत आती है तो शेख के सिवा दूसरे जिन जिनको भी तुम पुकारा करते थे वो सब गुम हो जाते हैं, मगर जब वो तुमको बचाकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो तुम इससे मुंह मोड़ जाते हो। इंसान वाकई बड़ा नाशुक्र है। ये बात पीछे गुजरी थी, यहाँ 3 सेकंड का गौर कर लीजिए। क्या मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक बेहतर हुआ? सिर्फ दुखों के वक्त पे अल्लाह को पुकारती और खुशियां मिलते वक्त उसको छोड़ तो नहीं देती। अच्छा, तो क्या तुम इस बात से बिल्कुल बेखौफ हो? इस पे भी अपना नाम लिखे। अल्लाह मुझे आपको चैलेंज करता है कि देखो, गुनाह करते वक्त तुम बेखौफ हो जाते हो, क्या क्या तुम इस बात से बेखौफ होगे कि अल्लाह कभी खुशकी पर ही तुमको जमीन में धंसा दे या तुम पर पथराव वाली आंधी भेज दे और तुम उससे बचाने वाला कोई हिमायती ना पाओ? और क्या तुम्हें इसका भी अंदेशा नहीं है कि खुदा कभी फिर किसी समंदर में तुमको ले जाए और तुम्हारी नाशुक्री के बदले तुम पर सख्त तूफानी हवा भेज कर तुम्हें गर्क कर दे? यानी देखिए, इंसान जब एक मुश्किल से निकलता है तो उसको दोबारा भी सोचना चाहिए कि फिर गुनाह कर रहा अगर तो दोबारा फिर भी तो अल्लाह से काम पड़ता है। बस लोग इतनी दुआएं मांग के तहज्जुदें पढ़ पढ़ के रिश्ते कराते हैं बच्चों के, अल्लाह रिश्ता करा देता है, उसी शादी और उस खुशी के मौके को अल्लाह की नाफरमानी का मौका बनाते हैं। ऐसे लगता है अब कभी अल्लाह से दोबारा जरूरत ही नहीं किसी काम की, इस घर को बसाना नहीं है, इनकी जिंदगी में सुकून नहीं चाहिए। लेकिन खुशियों में इंसान उछलने लगता है। एक स्टूडेंट है तो वो किसी और मजहब में थी पहले, तो मुसलमान हो गई। ऐसा ऐसा किस्सा मुख्तसर ये हुआ कि अब पहले तो उनके घर वाले इस्लाम का नाम नहीं सुनते थे, जब से उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है काफी ज्यादा उनकी माइंड सेटिंग हुई। उनकी वालदा खुद मुझे भी मिली एक मौके पर, तो बड़ी हैरान थी कि वही माँ जो मुझे खुद रोकती थी आज आपसे मिलकर आज इतनी खुश हो रही है। तो उसने अपना सुनाया कि हम एक दफा जहाज में थे, तो ये मुस्लिम थी, बाकी उसकी बहन और माँ वगैरह जो थे किसी और कौम से थे। तो कहने की जहाज बहुत शेक होने लगा ना, तो जब जहाज शेक हुआ तो सब डरे, तो मैंने कहा कि अल्लाह मैं 2 नफिल पढ़ूंगी, आप हमें सुकून से उतार दें। खैर, कहती जहाज ठीक हो गया। जब वापस उतरे तो इनकी बहन कहती अब जो 2 नफिल पढ़ लेना हमने वापस भी जाना है। क्या मतलब है कि फिर भी तो अल्लाह से काम पड़ना है, तो हम इस रब से बच के कैसे जी सकते हैं? अल्लाह तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तआला हमारे लिए आसानियों के मामले फरमा दे। तो फरमाया कि ये तो हमारी अनायत है, और क्या तुम्हें इसका अंदेशा नहीं कि अल्लाह फिर किसी वक्त समंदर में तुमको ले जाए और तुम्हारी नाशुक्री के बदले तुम पर सख्त तूफानी हवा भेजकर तुम्हें गर्क कर दे और तुमको ऐसा कोई ना मिले जो इससे तुम्हारे इस इंजाम की पूछ खिछ कर सके? ये तो हमारी इनायत है। इसको हाईलाइट करिए, वलकत करमना बनी आदम, ये तो हमारी इनायत है कि हमने बनी आदम को बुजुर्गी दी। सोचिए चंद सेकेंड तक, अल्लाह ने मुझे और आपको इज्जत दी। कितने खूबसूरत जानवर हैं, मोर को देखिए, तीतर को देखिए, कितने हसीन है, लेकिन अल्लाह ने उनको नहीं कहा मुझे और आपको कवा लकद करमना बनी आदम। इन्हें खुशकी और तर्री में सवारियां ताकि और इनको पाकीजा चीजों से रिस्क दिया और अपनी बहुत सी मखलूकात पर नुमाया फौकियत बख्शी। फिर ख्याल करो इस दिन का जबकि हम हर इंसानी गिरोह को इसके पेशवा के साथ बुलाएंगे। फिर ये अब दिल सोजी वाली आते हैं, क्यामत का मंजर से इनमें लाइएगा। उस वक्त जिन लोगों को इनका आमदनामा सीधे हाथ में दिया गया वो अपना कारनामे जिंदगी पढ़ेंगे और इन पर जरा बराबर जुल्म ना होगा। दूसरी बार ये मौजू इसे एक ही सूरत में आ गया, वमन का नफी हाजी आमा, इसको हाईलाइट कीजिएगा। और जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधे से भी ज्यादा नाकाम। दुनिया में अंधा बनना कैसे? ब्लाइंड नहीं, उसका अंदर अंधा था, आंखें तो देखती थी लेकिन उसको अल्लाह की रजा और अल्लाह की फरमा बरदारी नजर नहीं आती थी और इसके अलावा दूसरी चीजें नजर आ जाती थी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मैं दिल के अंधे बनने से बचाए। जब बंदा दिल से अंधा होता है ना तो उसको अल्लाह की रजा नहीं नजर आती, आंखों के अंधे को तो कुछ भी नहीं दिखता ना, तो दिल के अंधे को हर चीज से बेन्यास होकर बिल्कुल एक ही चीज की फिक्र लग जाती है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इस अंधेपन से बचा दे। फिर इसके बाद फरमाया, ए नबी, इन लोगों ने तो इस कोशिश में कोई कसर ही नहीं उठा रखी कि तुमको फितने में डालकर इस वही से फेर दें जो हमने आपकी तरफ भेजी, ताकि तुम हमारे नाम पर अपनी तरफ से कोई बात खड़ो यानी कुरान बदल लो, हम तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। देखिए, बार बार ये मौजू आ रहा है, सूरह यूनुस से लेकर अब तक जो मुझे याद आ रहा है ये 3रा मौका है कि जिसमें ये मौजू आ रहा है। कुरान बदलो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, थोड़ी सी हमारी मतलब की चीजें ऐड कर लो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम ये कुरान पढ़ेंगे अगर ये मिक्स गैदरिंग को जायज करार दे दे, हमें ये कुरान बहुत अच्छा लगेगा अगर ये सूद की इजाजत दे दे, वी लव दिस कुरान अगर ये लीकर को अलाउ कर दे, तो वो कुरान कौन सा रह गया। पीछे आपको बताया था ना कि लोगों ने एक बुक लिखी कि व्हाट काइंड ऑफ इस्लाम डज वेस्ट वॉन्ट। अब आप इस बुक का नाम सुन के परेशान है नहीं, अगर आप चाहते हैं ना कि इसका जवाब दे तो व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट डज इस्लाम वॉन्ट, ये किताब लिखी है कि इस्लाम कैसा वेस्ट देखना चाहता है, फिर लोगों को पता चलेगा कि इस्लाम क्या है और इस्लाम से जो खैर और बरकत फैलती है कैसी है। तो फरमाया कि ये तो आपको फितनों में डालकर वही से फेरना चाहते थे ताकि तुम हमारे नाम पर अपनी तरफ से कोई बात खड़ो, अगर तुम ऐसा करते तो वो जरूर तुम्हें दोस्त बना लेते, और भाई इतना था कि अगर हम तुम्हें मजबूत ना रखते तो तुम इनकी तरफ कुछ ना कुछ झुक जाते। पीयर प्रेशर, इंसान लोगों के प्रेशर में आके बाज़ दफ़ा इस किस्म के काम करने लग जाता है, लेकिन अगर तुम ऐसा करते। हाईलाइट कीजिए, और आज के मुसलमानों को ये मैसेज है अल्लाह का जिन्होंने ये कर लिया। कुछ भी कहें, लिबरल मुस्लिम, नॉर्मल मुस्लिम, रिलैक्स्ड मुस्लिम और एसिमिलेटिंग मुस्लिम, लेकिन अल्लाह कहते अगर दूसरों की खुशी के लिए अल्लाह के दीन की किसी बात को बदलोगे तो याद रखो हम तुम्हें दुनिया में भी दोहरे अजाब का मजा चखाते और आखिरत में भी दोहरे अजाब का मजा, फिर हमारे मुकाबले में तुम्हें कोई मदद ना होती। ये दोहरा अजाब क्या है, सूरत का शुरू याद कर लें, बनी इसराइल का दोहरा दौर, अल्लाह घरों में भी बेचैनियां डाल देगा, घरों में झगड़े फितने और मजमूई तौर पर उम्मत मुस्लिमा को भी अजाब देगा, और आखिरत के अजाब वो तो अल्लाह हम सबको उससे बचा के रखे।